ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 19 से 21 तक, श्लोक संख्या 21 बोर्ड पर है, इसका हम उच्चारण करेंगे। अजमीरो द्विमीरश्च पुरुमीरश्च हस्तिना अजमीरस्य वंशया अजमीरस्य वंश्यास्यो प्रियमेधादयो द्विजा। अजमीरो द्विमीरश्च पुरुमीरश्च हस्तिना अजमीरस्य वंश्यास्यो प्रियमेधादयो द्विजा। अजमीरो द्विमीरश्च पुरुमीरश्च हस्तिना अजमीरस्य वंश्यास्यो प्रियमेधादयो द्विजा। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अजमीरः अजमीर द्विमीरः द्विमीर च भी पुरुमीरा पुरुमीर च भी हस्तिनः हस्ति के पुत्र बने अजमीरस्य अजमीर के वंशया वंशज स्यु हैं प्रिय मेधादया प्रिय मेध इत्यादि द्विजः ब्राह्मण। अनुवाद। राजा हस्ति के तीन पुत्र हुए अजमीर द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर के वंशजों में प्रिय मेध प्रमुख था और उन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। तात्पर्य इस श्लोक से, इस श्लोक में ऐसा प्रमाण मिलता है जो भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि करता है कि समाज के वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र गुणों तथा कर्मों के आधार पर परिगणित होते हैं। गुण कर्म विभागश। क्षत्रिय वर्ण के अजमीर के सभी वंशज ब्राह्मण बन गए, ऐसा उनके गुणों तथा कर्मों के आधार पर हुआ। इसी प्रकार कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पुत्र वैश्य बन जाते हैं। ब्राह्मण वैश्याम गतः। जब क्षत्रिय या ब्राह्मण वैश्य के व्यवसाय या कर्म को ग्रहण करता है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, तो वह निश्चित रूप से वैश्य गिना जाता है। दूसरी ओर वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय से ब्राह्मण बन सकता है, इसकी पुष्टि नारद मुनि ने की है। यस्य या लक्षणम प्रोक्तम, विविध वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए, जन्म से नहीं। जन्म महत्वपूर्ण नहीं, गुण आवश्यक है। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये भागवतम का नवा स्कंद चल रहा है और अध्याय का नाम है भरत का वंश। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा राजा दुष्मंत और शकुंतले के पुत्र होते हैं भरत, क्योंकि बहुत पराक्रमी राजा होते हैं। और फिर भरत के वंश का वर्णन किया गया है और भरत के वंश में प्रमुख राजा आते हैं, राजा रंतिदेव, और जिनकी कथा बहुत ही प्रेरणात्मक थी। कल के श्लोक में ही उनका प्रसंग समाप्त होता है, किस प्रकार से राजा रंतिदेव ने 48 दिनों का उपवास रखा और उसके बाद भी उनमें इतना सहनशीलता थी कि उन्होंने ब्राह्मण शूद्र और चंडाल को भी, जो भी कुछ उनके पास खाने पीने को था, सब कुछ बांट दिया। और ये भी बताया गया कि जिन जिन्होंने रंतिदेव जी का अनुवर्तन किया, उनका संग किया, वो भी महान वैष्णव बन गए। उसके बाद इसी वंश को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं पिछले दो श्लोकों में, अब रंतिदेव जी के आगे के जो वंश है उनका वर्णन करते हैं। गर्गाचिन्स्थितो गार्ग्य क्षात्र क्षत्राद ब्रह्म ही वर्तता दुर्तक्ष्यो महावीर्य तस्वैरुणुर्कवि पुष्कुरारणुनित्र ये ब्रह्मणा गतिम गता भरतक्षत्रस्य पुत्रो भू द्विहस्ति यदस्तिनापुरम। गर्ग से शनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र गार्गे हुआ। यद्यपि गार्गे क्षत्रिय था, किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। महावीर का पुत्र दुर्तिक्ष्य हुआ, उसके तीन पुत्र थे, रयारुणी कवि तथा पुष्करारुणी। यद्यपि दुर्तक्ष के ये पुत्र क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। ब्रह्मक्षत्र का एक पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुरक नामक नगर आज की नई दिल्ली की स्थापना की। और फिर आज का श्लोक, राजा हस्ती के तीन पुत्र हुए, अजमेर द्विमेर और पुरुमेर। अजमेर के वंशजों में प्रियमेद प्रमुख था, और इन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि गुण आवश्यक है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवता के श्लोक को गुण कर्म विभागश, चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्मों के अनुसार वर्णों का स्थापना होती है, और ना कि जन्म के अनुसार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये वर्ण क्या है, वर्णाश्रम क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, और कैसे कोई अपना वर्ण निर्धारित कर सकता है, कितना आवश्यक है, और हमारे अपने समुदाय में हम कैसे इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन सब का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि वर्णाश्रम होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। वास्तव में हम लोग जीवात्मा जो इस संसार में है वो आध्यात्मिक है अपनी प्रकृति से, स्वभाव से, लेकिन इस भौतिक वातावरण में है तो बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, आध्यात्मिक फूलिंग भौतिक शरीर में। तो जब तक इस भौतिक शरीर में है, इस शरीर के धर्म का भी पालन करना है और आत्मा आत्मा के धर्म का भी पालन करना है। तो दो प्रकार के स्वधर्म हुए, एक को बोलते हैं पराधर्म, एक को बोलते हैं अपराधर्म। पराधर्म हुआ जो आत्मा के स्तर का है, वो भागवत धर्म है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और अपराधर्म जो शरीर से संबंधित है वो अपराधर्म है। तो इस शरीर से संबंधित कार्यों को इस ढंग से करना कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। क्योंकि अक्सर हम अगर शरीर के धर्म का पालन करने में कई बार इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म वो एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ऐसा साइंटिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज को इस ढंग से संगठित किया गया कि हर कोई अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार। गुण कैसे निर्धारित होते हैं, पिछले जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए उनके अनुसार हमारे में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहता है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा होगा, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। लेकिन देखिए वैदिक संस्कृति कितनी महान है, हर किसी के लिए चांस है, हर किसी के लिए स्कोप है उन्नति करने का। तो वो पूरे समाज को इस ढंग से संगठित किया कि कोई तमोगुण में भी हो कोई बात नहीं, उसको भी उसकी भी उन्नति हो, और वो धीरे धीरे सब जीवन के परम लक्ष्य, मनुष्य के परम लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, उसकी ओर आगे बढ़े। तो ये वर्णाश्रम का पूरा एक स्ट्रक्चर इस ढंग से बनाया गया, ठीक है। और वर्ण और आश्रम, चार वर्ण और चार आश्रम। और शिला प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम है हमारे लिए इसलिए कि हम सबका जो जीव यहाँ पर संसार में आया कृष्ण से विमुख होकर भोगने की प्रवृत्ति, तो पार्श्विक चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस है। तो प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम से क्या होगा, पार्श्विक चेतना से आप मनुष्य की चेतना में आएंगे, मानव चेतना से, और मानव चेतना से आप कृष्णा भाना भावित होंगे, गॉड कॉन्शियस होंगे। सो एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू गॉड कॉन्शियसनेस, ये सारा हम उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं वर्णाश्रम का पालन करके, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। और चार प्रकार के वर्णाश्रम है, एक है नेचुरल स्वाभाविक। स्वाभाविक है कि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्तियां होंगी, उसमें से कुछ बुद्धिजीवी होंगे, कईयों को पढ़ना पढ़ाना ये अच्छा लगता है, कईयों का प्रशासन करने की, नियंत्रण करने की प्रवृत्ति होती है, कईयों के धन अर्जन करने की प्रवृत्ति होती है, और कईयों को कुछ आगे नेतृत्व लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, सबकी सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये स्वाभाविक है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्णाश्रम वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, स्वाभाविक वर्ण है। तो एक स्वाभाविक वर्णाश्रम होता है। दूसरा है वैदिक वर्णाश्रम। वैदिक वर्णाश्रम में क्या होता था कि पूरे के पूरे समाज को इस ढंग से संगठित किया गया कि गुणों के अनुसार से देखा गया कि बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, उसको ऑब्जर्व किया जाता था किस प्रकार के उसके अंदर गुण की महत्वता ज्यादा है और उसी के हिसाब से उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। आज की इस तरह सिस्टम नहीं है कि सबके लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम है, सबके लिए सफलता का एक ही मापदंड है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए तो आप समाज में फेलियर हैं, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए अलग अलग उसकी योग्यता देखी जाती थी, अलग अलग योग्यता देख के स्त्रियों के लिए अलग प्रशिक्षण होता था, पुरुषों के लिए अलग प्रशिक्षण होता था, पुरुषों में भी अलग अलग उनके वर्णों के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो वैदिक सिस्टम इस ढंग से होता था और उसमें क्या होता था कि क्रमशः उन्नति होती थी। अगर किसी में तमोगुण की प्रधानता है और वो शूद्र है वर्ण का, तो अपने शूद्र धर्म का सही पालन करते करते वो शूद्र से वैश्य में उन्नति होती थी, वैश्य धर्म का सही पालन करते करते वो क्षत्रिय बनता था, क्षत्रिय का सही पालन करते करते वो ब्राह्मण बनता था, फिर ऊंचे लोकों में जाता था। और इस प्रकार से कोई 100 जन्म तो अपने वर्णाश्रम का पूरा पालन कर लेता था, उसको ब्रह्मा जी की उपाधि मिल जाती थी। ये पूरा एक वैदिक सिस्टम था वर्णाश्रम का। उसके बाद है एक आसुरी वर्णाश्रम। आसुरी वर्णाश्रम जैसे कि आज के कलयुग में चल रहा है। आसुरी वर्णाश्रम में क्या है कि वर्ण निर्धारित की जाते हैं मुख्यतः जन्म के आधार पर, कि जन्म से हम जाति हमारी ये है, हम ब्राह्मण हैं, चाहे शर्मा फुटवेयर हो या जूते का काम कर रहा हो, लेकिन हम शर्मा जी हैं तो हम ब्राह्मण हैं। बुरा ना माने कोई, ऐसा हम बता रहे हैं कि जन्म हमारा, जन्म से हम ब्राह्मण हैं, जन्म से हम क्षत्रिय हैं, नहीं। और उसमें शारीरिक चेतना रहती थी कि शरीर ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से आसुरी ये वर्णाश्रम होता है। और सबसे प्रमुख है देवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम कह अतः पुंभी दुज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश सुनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, के चाहे किसी भी वर्ण में हो, आप किसी भी आश्रम में हो, मुख्य उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। जो आपकी प्रवृत्ति है उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करना, उपयोग करना कि आप भगवान की सेवा में जुड़े रहें। इस प्रकार से पूरे समाज को संगठित करना कि हर कोई अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अंततः कृष्ण को वो प्रसन्न करता रहे, तो ये हुआ देवी वर्णाश्रम। तो इस प्रकार से 4 वर्णाश्रम प्रकार के वर्णाश्रम होते हैं। अब इसमें हर वर्ण के अलग अलग गुण बताए गए। भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रहलाद महाराज का प्रसंग समाप्त हुआ तो नारद मुनि से प्रश्न किया कि आदर्श मनुष्य मानव समाज के विषय में बताइए। तो अंतिम के 4 अध्यायों में उन्होंने बताया और 11वें अध्याय से शुरू होता है। तो नारद मुनि ने सबसे पहले चतुर्वर्ण, 4 वर्णों के विषय में बताया और इसके पूरा विस्तार में बनाने से पहले नारद मुनि जी ने बताया कि मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर कोई जीव जिसको मानव देह मिला है तो कैसे वो कहलाएगा कि वो मनुष्य है। तो उन्होंने कुछ गुण बताए कि मनुष्य में ये तो मिनिमम गुण होने ही चाहिए कम से कम, उसके बाद फिर वर्णाश्रम की बात करेंगे। जिनमें ये गुण नहीं है उसमें वर्णाश्रम लगा ही नहीं सकते, पहले ये गुण तो होने चाहिए फिर वर्णाश्रम उस पर लगाएंगे, है ना। तो सुनिए कौन कौन से गुण है। सभी मनुष्यों को जिन्हें सामान्य नियम का पालन करना होता है ये है। क्या क्या नियम है? सत्य, दया, तपस्या। रूपालेख ने तपस्या मतलब महीने में कुछ दिन उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें स्मार्टफोन पर ना करना, मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना, सभी जीवों, पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों और उनके उपदेशों को सुनना। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना, दास बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। कितनी बड़ी लिस्ट है। ये तो सामान्य मनुष्य में ये गुण होने चाहिए। और फिर बोल रहे हैं, हे राजा युधिष्ठर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो 30 गुण होने चाहिए, तो पूरी लिस्ट है। सत्य बोलना, सहनशील होना, दान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का दास बनना, साधुओं की सेवा करना, साधुओं से सुनना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। ये सामान्य नियम है, ये तो हर मनुष्य में होने ही चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि आवश्यक है, जब तक कोई समाज में सत्य नहीं बोलेगा शांति कैसे रह सकती है। दान देना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे शांति रहेगी। तो बोले आजकल इस समाज में गुणों को कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इसीलिए तरह तरह की शांति की योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन शांति होती नहीं। तो इसके बिना जो समाज है वो पशु समाज है। इसके बाद फिर बोला गया कि जिन लोगों में ये योग्यता है उन वो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं। और जो वर्णाश्रम धर्म है इसका जो शुरुआत होती है संस्कारों से होती है, और सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, कि गर्भाधान संस्कार होता है। और उसके बाद एक मुख्य उद्देश्य है, एक जो जनसंख्या उत्पन्न हो रही है वो अच्छे गुणों से विकसित हो, उनके अंदर अच्छे गुण हो। ज़्यादा जनसंख्या कभी समस्या नहीं रही, जनसंख्या की क्वालिटी खराब है ये समस्या है ना। और यहाँ पे आज के समाज में ओवर पॉपुलेशन को प्रॉब्लम बताई जाती है। ओवर पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम। और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि कोई संस्कार नहीं है ना। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा भानामृत का अनुशीलन करने से ये गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। और खासकर स्त्रियों को अगर सुरक्षित नहीं रखा गया तो स्त्रियां अगर दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं उससे हमेशा समाज में उत्पाद रहता है। और आज के समाज की कलयुग की यही स्थिति है, पूरे समाज में उत्पाद मचा हुआ है क्योंकि वर्ण संकर है सब। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कैसे इस कलयुग के वातावरण में हम कृष्णा महानाभावित भी रहें। और प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम को भी स्थापित करना है। प्रभुपाद के देखिए दो प्रकार के संस्कृति हैं, एक तो है वैष्णव संस्कृति, एक है वर्णाश्रम संस्कृति। प्रभुपाद जब स्टार्टिंग में प्रारंभ के वर्षों में 1965 में गए पाश्चात्य देशों में, तो प्रभुपाद ने कहा, आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, प्रारंभ के तात्पर्य भी पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने कहा कि कलयुग में सब व्यवस्था अस्त व्यस्त है, वर्णाश्रम का पालन नहीं हो पाएगा, हम सीधा भागवत धर्म का करेंगे, सबको कृष्ण के प्रति समर्पित करेंगे हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। लेकिन 1972-73 के बाद प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया हाँ वर्णाश्रम की भी बहुत आवश्यकता है, कि प्रभुपाद ने देखा कि इतने जटिल है कलयुग का वातावरण कि भक्तों के लिए भक्ति करना मुश्किल हो रहा है ना। जैसे हम देखते हैं आज के समाज में भी भक्तों को मेट्रोज में 2-2 घंटे काम करने जाना, फिर 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 10-12 घंटे ऑफिस में, और वहाँ इतना असत्संग, इतना खराब कल्चर है सारा, उसके बाद आके भक्तों के लिए 16 माला करना ही मुश्किल हो जाता है, 4 नियम पालन करने में तकलीफ। तो चाहते हुए भी आसपास का कल्चर, आसपास का संस्कृति इतनी खराब है कि हम भक्ति का पालन करना मुश्किल हो रहा है। तो कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस करना, भक्ति करना, एक जिसके कहते हैं ना कि टाइट रोप वॉक, बहुत मुश्किल है रस्सी पे से चलना, और जो वर्णाश्रम है वो एक नीचे एक सेफ्टी नेट का काम कर सकता है, सपोर्ट करे वर्णाश्रम ऐसे कि हमें भक्ति करने में सहूलियत हो। हमें शरीर है तो शरीर और परिवार के पालन के लिए कुछ धन चाहिए, धन अर्जन के लिए कुछ काम धंधा करना है, तो इस ढंग से करें कि वो हमें भक्ति में सहायक हो, भक्ति को पीछे ना ले जाए। तो इसलिए एक वर्णाश्रम की एक आवश्यकता है। और कलयुग में प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहले जो अटैक हुआ सभ्य समाज में वो वर्णाश्रम के ऊपर अटैक हुआ है ना, कि सारा जो सिस्टम था अस्त व्यस्त हो गया। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कलयुग में कैसे करें। और इसकी प्रारंभ होती है हम देखते हैं ब्राह्मणों के प्रदूषित होने पे, करप्ट होने पे। श्रृंगी ब्राह्मण की जैसे कथा आती है कि श्रृंगी ब्राह्मण ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने शम्यक ऋषि जी के गले पे मरा हुआ सांप रखा, और जब श्रृंगी को ये मालूम चला तो 5 साल का बालक में इतनी शक्ति थी उसमें कि उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा कि ये कौवे, ये कुत्ते, ऐसे बड़ी गाली दी उन्होंने, इनकी कैसे हिम्मत होगी, घर में प्रवेश कर गए, उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया मेरे पिता के साथ, और एक ही सप्ताह में इसकी मृत्यु हो जाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज का कुशल राज्य था, प्रशासन था, कि उनके कुशल प्रशासन के कारण उन्होंने इतनी सुरक्षा प्रदान की हुई थी ब्राह्मणों को कि एक 5 साल के ब्राह्मण के पुत्र में भी इतनी तेज था, इतनी शक्ति थी। तो श्रृंगी को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया गया, श्रृंगी सही ब्राह्मण था जन्म से भी और प्रशिक्षण से भी, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं संस्कृति में सही नहीं था, कल्चर में ठीक नहीं था। तो गुण कर्म यानी कि करेक्टर भी होना चाहिए और कॉम्पिटेंस भी होने चाहिए, गुण भी होने चाहिए। अब श्रृंगी में कॉम्पिटेंस थी, बड़ा योग्य था ब्राह्मण, बहुत तेज था, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं था, उसकी संस्कृति ठीक नहीं थी, और क्योंकि उसको बहुत घमंड था कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, और उसका नीचे के वर्णों के लिए ज्यादा उसके हृदय में आदर नहीं था, और जो कलयुग है, कलयुग ने प्रवेश किया इसी गर्व के कारण, ब्राह्मणों में गर्व आ गया और वहां से कलयुग प्रवेश कर गया, और तब से हम देखते हैं कि पूरा पतन शुरू हुआ। क्योंकि पहले जो ब्राह्मणों का पूरा समाज आदर करता था, ब्राह्मण निस्वार्थ सेवा करते थे, ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, यानी मुख्य कार्य है भगवान की सेवा करना और शिक्षा देना और दान देना। ब्राह्मण दान देते थे, जो उनको दान में प्राप्त होता था वो आगे दान दे देते थे, और ये भी लिखा गया है कि वो ब्राह्मण जो शुद्ध नहीं होता था, जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है उसको दान स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने आप को शुद्ध जो उनको होते थे वो दान देते थे, और सारा सारा दान वो आगे देते थे, और बहुत विनम्र सादा जीवन जीते थे, और इस कारण से पूरा समाज उनका आदर करता था। लेकिन श्रृंगी के माध्यम से ब्राह्मण में कुल वर्ण में अहंकार आया, और उससे उन्होंने पूरे समाज की जो आदर था वो खोया। और फिर क्या हुआ, जब ब्राह्मणों ने जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण के निर्देशन में कार्य करते थे, तो क्या हुआ कि अब ब्राह्मण ने उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू किया, ब्राह्मण बहुत गर्वित हो गए, तो धीरे धीरे क्षत्रियों ने कहा कि हम क्यों उनकी आज्ञा का पालन करें, तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। अब क्षत्रिय अपना राज्य चला रहे हैं बिना किसी गाइडेंस के, बिना शास्त्रों के आदेश के अनुसार, बिना ब्राह्मणों के गाइडेंस के, तो क्या हुआ, माइट इज राइट, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो ठीक है, तो उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्होंने इधर उधर से कर वसूल करना शुरू कर दिया, और सारी की सारी सुविधाओं को अपनी नेतृत्व में लगाना शुरू किया। तो जब उन्होंने अब वैश्यों का शोषण करना शुरू किया, अब वैश्य ने भी कुछ समय तक शोषण होता रहा, तो वैश्यों ने बोला हम क्यों उनको कर दें और ये अपनी नेतृत्व करें, तो वैश्यों ने बगावत कर दी, वैश्यों ने बगावत कर दी तो वैश्य फिर आगे राज्य करने लगे, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्यों की चापलूसी करने लगे, मनी इज पावर, पैसे से सब कुछ होने लगा, सरकार पलटने लगी सब पैसे से, तो वैश्य ऊपर आ गए, और वैश्यों ने अब आगे खूब पैसा कमाना है तो उन्होंने किनका शोषण करना शुरू कर दिया, शूद्रों का, लेबर क्लास का, लेबर क्लास भी कुछ समय तक शोषण होता रहा, बोले हमारा क्यों शोषण करें, है ना, उन्होंने बगावत कर दी, कम्युनिज्म आ गया, तो अब शूद्र ऊपर हो गए जी, अब सारे शूद्र डिक्टेट करने लगे, तो क्या हुआ, पूरा अस्त व्यस्त हो गई समाज, और इस ये कलयुग के लक्षण है, और शुरू कहाँ से हुआ, ब्राह्मणों के पतन से। तो इसलिए अब ऐसे वातावरण में मेरा कौन सा वर्ण है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, यही संभल पाना बड़ा मुश्किल है। अपने स्वरूप को जाना कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, ये जाना तो मनुष्य का लक्ष्य है ही, अब उसके बाद पहले यही जाना कि मेरे अंदर कितना तमोगुण है, कितना रजोगुण है, कितना सतोगुण है, बड़ा मुश्किल है, कैसे जान पाए, होता क्या, कैसे जान पाए, हम देखेंगे कि जब अपने वर्ण के अनुसार हमें कोई सेवा मिलती है तो उसको करने में हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, आसानी से कर लेते हैं, और उसको करने में बहुत कॉम्पिटेंट भी होते हैं, बड़े निपुण भी होंगे करने में, और करने में उसमें हमें अंदर से आनंद की भी अनुभूति होगी, और उसमें अगर कुछ चुनौतियां आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, तो वो समस्याएं हमें चुनौती के रूप में लगेंगी, उसको रैलिज करेंगे, है ना, क्षत्रिय लड़ने से पहले तलवार को चूमता है ना, उसको अच्छा लगता है, और एक ब्राह्मण को लड़ने के लिए भेज दो, वो थोड़ी तलवार को चूमेगा, वो भाग जाएगा तलवार देख के, है ना। हमारे कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी में किसकी ब्राह्मण प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा, उसको बोलो आप चलो मंदिर बनाना है 50 करोड़ इकट्ठे करो, वो नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बोले क्या जरूरत है इतना बड़ा मंदिर बनाने का, मंदिर का उद्देश्य हरि कथा ही तो करनी है, तो यहाँ बैठ के कर लेते हैं आराम से हमारी कथा हो जाएगी आराम से, क्या जरूरत है ना। लेकिन किसी क्षत्रिय को बोलो मंदिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है, बोले हाँ ये मजा आया ना कुछ, अभी चैलेंज है कुछ, और उसमें और जितनी चुनौतियाँ आएंगी सरकार ने रोक लगा दी, बोले अभी देखता हूँ यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, ये बात करता हूँ वहाँ बात करता हूँ, है ना, अपनी सारी लीडरशिप स्किल्स दिखाएगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा, तो उसके लिए चुनौती है। नहीं कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का होगा उसको ये समस्या आ जाए तो घबरा जाएगा, है ना। तो कई बार जब अपने वर्ण के अनुसार नहीं लगे होते और हमें अपने कार्य में इतनी चुनौतियाँ आती हैं तो हमारा भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। हम इतने कष्टों से, वो इतना कष्टमय होता है कि भक्ति करना नहीं लगता। जैसे आजकल जाते हैं अब भक्तों को धन अर्जन करना है और जाना पड़ता है, और वहाँ जाना और ऐसे वातावरण में नौकरी करना या बिजनेस करना इतना कष्टपूर्ण है कि सारी चेतना दूषित हो जाती है, तो भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं किस वर्ण में है ना, जहाँ किसको करने, जिस सेवा करने में हम पूरे रूप से कंफर्टेबल भी हो और निपुण भी हो। लेकिन अगर यही सोचते रहे हर समय मेरा वर्ण क्या है, मैं कौन हूँ, के आमी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये मेरी नेचर के अनुसार है क्या, इस सेवा मैं कर रहा हूँ क्या, क्या मेरा शोषण तो नहीं हो रहा, अगर यही सोचते रहेंगे तो क्या होगा, मन हमें यही बताएगा बेटा तू गलत फंसा हुआ है, सब तेरा शोषण कर रहे हैं, ये जो सेवा ना तेरे नेचर के अनुसार नहीं है, छोड़ दे इसको, दूसरी इसलिए फिर ये भी मेरे नहीं है, क्या क्यों कंफ्यूज घूम रहे, मैं अपनी नेचर को ढूंढ रहा हूँ, मेरी नेचर क्या है, तो माइंड हमें ऐसे चीट करता रहेगा, है ना। इसलिए जो गुरु होते हैं जो वो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार ही एंगेज करते हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर गुरु के आदेश है नहीं, अगर आपकी नेचर है तब भी ये करो, तो हम देखते हैं कि भक्त लोग अगर गुरु को समर्पित हैं, हो सकता है वो अंदर से कंफर्टेबल ना हो लेकिन सेवा कर करके वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं उस सेवा में, और ये असली कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसमें असली प्रगति होती है। ऑल्दो आई एम नॉट कंफर्टेबल बट आई स्टिल बिकम फुली कॉम्पिटेंट टू प्लीज माय गुरु, ये असली एक वैष्णव धर्म है। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से करवाया भी, हम देखते हैं कि शुरू शुरू में प्रभुपाद ने सबको पुस्तक वितरण में लगाया, चाहे जैसे जिसकी प्रवृत्ति है सब लग रहे थे पुस्तक वितरण में, करते 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 सब रिफाइंड हुआ, तो उनमें से बाद में कोई साइंटिस्ट बन गया, साइंटिफिक स्पीच कर रहा है, कोई बहुत बड़े ट्रेनर बन गए, कोई कई उन्होंने पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में सबको वही सेवा दी गई। तो बाय एक्सपीरियंस अनुभव के साथ और विचार विमर्श करके डिस्कस करके कंसल्ट करके हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। और यहाँ भागवतम के सप्तम स्कंद लिखा गया है कि एमरजेंसीज में जो निम्न वर्ण के जन हैं वो ऊंचे वर्ण की भी सेवा कर सकते हैं, वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण की भी सेवा कर सकते हैं एमरजेंसीज में। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जस्टिफाई कर रहे हैं कि अक्सर लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने मलेच्छों और यमनों को ब्राह्मण बना दिया, प्रभुपाद कह रहे हैं ये नारद मुनि कह रहे हैं एमरजेंसी है, कलयुग में एमरजेंसी है ना, प्रचार करना है, तो हमने क्या किया मलेच्छों और यमनों को भी हमने क्या बना दिया ब्राह्मण बना दिया, और ताकि वो डीटी वर्शिप कर सके, आंच वगैरह की सेवा कर सके, इमरजेंसी सिचुएशन थे। और ये ब्राह्मण दीक्षा से ऐसा नहीं होता, जैसे हम सेकंड इनिशिएशन लेते हैं उसको हम ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षा लेते ही हम ब्राह्मण बन गए, आज जनेऊ पहना तो मैं अब वैश्य से ब्राह्मण बन गया, नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि ब्राह्मण दीक्षा देने का अर्थ ये है कि हमारे में ये इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि मेरे में इतना सत्वगुण है कि मैं आश्विग्रह की सेवा कर सकता हूँ, चाहे हम वैश्य हों, चाहे हम क्षत्रिय हों, चाहे हम शूद्र हों, हर किसी में कुछ ना कुछ सत्वगुण होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सभी गुण नारद मुनि जी बता रहे हैं, लेकिन इसमें केवल शूद्रों का ही गुण सुन लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ब्राह्मण के क्या गुण होंगे। तो हाँ, शूद्रों के गुण हैं, समाज के ऊंचे वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, द्वेत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना तथा गायों एवं ब्राह्मणों को सदा संरक्षण प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण है। शूद्र भी इतने एलिवेटेड हैं, शूद्र के गुण भी कि स्वच्छ रहना, सत्य बोलना, ईमानदारी से सेवा करना, ये भी सत्वगुण है उनमें, सत्य बोलना, स्वच्छ रहना, ये सत्वगुण के लक्षण है। वैश्यों में भी सतगुण होते हैं। वैश्य के गुण होते हैं कि दान देना, वैश्य का गुण है। तो अब जैसे कुछ वैश्य होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जो दान देना अच्छा लगता है उनको, और कई होंगे जो जिनमें रजोगुण ज्यादा नहीं, वो जो पैसा आया उसको बिजनेस में ज्यादा एक्सपेंड करूंगा, दान कम दूंगा। जो दान दे रहा है उसके अंदर सतगुण ज्यादा है। तो जब हम सेकंड इनिशिएशन लेते हैं, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इतना पर्याप्त मात्रा में सतगुण है कि वो अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है, तो सेकंड इनिशिएशन। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में निम्न वर्ण के लोगों को भी उन्नत किया जाता है उच्च वर्ण में, ताकि वो ब्राह्मण की सेवा कर सके। तो इस प्रकार से वर्ण के अनुसार सेवा करने में हमारे अंदर जो भौतिक स्तर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और हम अपने समुदाय में भी देख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमें धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, असत्संग करना पड़ता है, दूषित होना पड़ता है, तो पूरे भक्तों के समुदाय में कुछ डॉक्टर्स लोग हैं मिलके हॉस्पिटल खोल लें, कुछ मिलके अच्छा स्कूल खोल लें बच्चों के लिए, इतनी आवश्यकता है इस समय। स्कूल को प्रभुपाद कहते हैं स्लॉटर हाउसेज हैं, है ना। आप जाएंगे स्कूल में सब उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, और ना चाहते हुए भक्त लोग, और भक्त लोग, भक्तों के भी बुरा मत मानिए, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कई बार, क्षमा करना कहते हुए कहना पड़ रहा है। भक्त लोग मानते भी हैं, हाँ स्कूल आजकल स्लॉटर हाउसेज हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, भगवतहीनता गॉडलेसनेस सिखाई जाती है, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ब्रांडेड स्कूल में पढ़े, है ना। क्यों ब्रांडेड स्कूल में पढ़े? सब भगवान को भूलना सिखा रहे हैं वहाँ पे। जितने बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स हैं उतना ज़्यादा वहाँ ड्रग एडिक्शन है, इलिसिट सेक्स है। तो कैसे होगा ये, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे आगे? तो भक्तों को थोड़ा आगे जाके गट्स दिखाने चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। भक्त लोग अपना स्कूल खोलें हम, और सभी भक्त अपने बच्चे संतानों को उसमें डालें जिसमें अच्छे संस्कार दे सकें, भौतिक शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षाएँ दें, अच्छे संस्कार दें, तो उनको फिर बाहर के वातावरण में निर्भरता उनकी कम हो जाएगी। इसी ढंग से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें जाना पड़ता है बाहर के लोगों से संपर्क करना पड़ता है। तो पूरे अपने समुदाय में जितनी हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो आपस में हम पूरी कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक शहर में रहते हुए भी हम एक वर्णाश्रम का मॉडल स्थापित कर सकते हैं। दूसरा वर्णाश्रम का मॉडल है कि गाँव में जाएँ, वहाँ एक फार्म कम्युनिटी बनाएँ, गायों को केंद्र में रखें, खेती करें, कुछ लोगों की उसमें रुचि, वो भी एक वर्णाश्रम का मॉडल है। लेकिन शहर में भी ऐसा नहीं कि शहर में वर्णाश्रम नहीं हो सकता, उसका शहर में वर्णाश्रम का ही मॉडल हो सकता है, और ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वर्णाश्रम स्वाभाविक तो है ही, बुद्धिजीवी कुछ लोग होंगे स्वाभाविक रूप से, तो हो सकता है किसी के अंदर बुद्धि हो ब्राह्मण वाली लेकिन उसकी इच्छाएं हो शूद्र वाली, क्योंकि आसपास का वातावरण ऐसा है। हो देखते हैं, हम कॉलेजेस में देखते हैं कई स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, हमारे कॉलेज में थे बहुत ब्रिलियंट, हमेशा 10 out of 10 एकदम टॉपर, लेकिन क्या था, चेन स्मोकर था। और वास्तव में कोई बुद्धिमान है तो अरे भाई स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, है ना, बाद में उसको लंग कैंसर हो गया। तो बुद्धि बहुत तीव्र है, ब्राह्मण वाली बुद्धि, उसको सही ढंग से लगाया जाए तो कितना समाज का भला कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया में इतने लोग बुद्धि हैं, जो लोग कंप्यूटर में वायरस बनाते हैं वो कितने बुद्धिमान होते हैं, शरारती दिमाग देखिए कितने। अगर उसको सही कल्चर दिया जाए तो कितना आगे कर सकता है। उल्टे सीधे गेम्स किए, जैसे क्या हो गेम था जैसे बच्चे सुसाइड कर रहे थे, ब्लू वे, है ना, देखिए कितना क्या दिमाग लगाया होगा उसने, कितना हिप्नोटाइज कर लिया बच्चों को। अगर वही बुद्धि को सही ढंग से चैनलाइज किया जाए तो कितना वो समाज का उद्धार कर सकता है, है ना। तो इसी ढंग से एक सही कल्चर के देने की आवश्यकता है, अन्यथा क्या होगा, ये जो बुद्धि है, बुद्धि तो है, कुछ बुद्धिजीवी लोग तो होंगे ही होंगे, उनकी बुद्धि गलत दिशा में जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कृष्णा भानाभावित का प्रचार करेंगे तो क्या होगा कि एक कल्चर जो संस्कृति में सुधार होगा और लोग फिर अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव से इस वर्णाश्रम पे आक्रमण हुआ और आप पूरी समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, तो इसको पूरा दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। कि कलयुग कैसे प्रवेश किया, कलयुग के प्रभाव को कम करने का एकमात्र तरीका है हरिनाम संकीर्तन, है ना। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो जितना इस हरिनाम संकीर्तन का हम प्रचार करेंगे उतना हम अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, अन्यथा कलयुग का प्रभाव तो बढ़ता जाएगा, वो खाली 5000 वर्ष हुए हैं और आगे देखिए होता क्या, बहुत कुछ होगा। लेकिन हरिनाम संकीर्तन को हम बढ़ाते रहेंगे तो इस कलयुग के प्रभाव को रोक देंगे। तो कलयुग के प्रभाव को अब रोकने से क्या होगा, हम सही संस्कृति ला सकते हैं और सही ढंग से वर्णाश्रम का भी हम पालन कर पाएंगे। और इस वर्णाश्रम का सही पालन करने से ये हमें सही एक तरीके से फैसिलिटीज देगा, एक अच्छा वातावरण देगा, अनुकूल वातावरण देगा, जिसमें अपने शरीर की आवश्यकताओं में पूरी करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को भूलेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। निरंतर देखकर बहुत दुख होता है कि भक्त लोग भक्ति करना चाहते हैं, सिंसियर हैं, लेकिन क्या करें, धन भी अर्जन करना है। धन अर्जन करने के लिए बिजनेस करते हैं, बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं और वहाँ इतना फंस जाते हैं कि बहुत मुश्किल है। और एक जो वैष्णव कल्चर है, अब जैसे प्रभुपाद ने मुख्यतः वैष्णव कल्चर पर जोर दिया कि क्या है कि उसमें वर्णाश्रम कल्चर में क्या है, देखा जाएगा कि ठीक है आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी को बहुत सादा जीवन जीना चाहिए, वृक्ष की छाल डाल के जटाएं रख के घूमना चाहिए, है ना। लेकिन वो अब वैष्णव कल्चर में नहीं, हम वैष्णव में ब्रह्मचारी को बोलेगा प्रचार कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, तो लैपटॉप भी यूज़ करेगा, स्मार्टफोन भी यूज़ करेगा, किसके लिए, प्रचार के लिए। लेकिन क्या है वर्णाश्रम वैष्णव संस्कृति में क्या है, युक्त वैराग्य हमारा मुख्य सिद्धांत। लेकिन इस युक्त वैराग्य को भी सही ढंग से कर सके इसके लिए भी पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आसपास की संस्कृति इतनी दूषित ना हो कि हम युक्त वैराग्य भी सही ढंग से पालन ना कर पाए। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि जोर शोर से हम इस कृष्ण भानुवेद का प्रचार करें। और इसके लिए बहुत सही माध्यम है कि अभी जो चल रहा है गीता मैराथन मंथ, आज से शुरू हो गया 1 दिसंबर से, तो इस पूरे गीता मैराथन को हम अच्छे ढंग से समझें। प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंध में परीक्षित महाराज के प्रसंग में लिख रहे हैं कि हर कोई अगर इस हरिनाम संकीर्तन में, भागवत धर्म के प्रचार में लग जाए तो हम कलयुग को रोक सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि परीक्षित महाराज ने ऐसा ही किया था। परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए कि आप 4 स्थानों में रह सकते हो, लेकिन परीक्षित महाराज ने इंश्योर किया कि ये 4 स्थान आगे विकसित नहीं होंगे उसके राज्य में। और कैसे किया उन्होंने, जितना उनके पास धन पड़ा था उनको उन्होंने हरिनाम संकीर्तन में लगाया। इसी प्रकार से हम भी अपना जितना तन मन धन से अगर इस प्रचार में लगते हैं तो फिर हम कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और कलयुग के प्रभाव को रोकने से क्या होगा, हमारे लिए भक्ति करना बहुत सरल हो जाएगा। अन्यथा बहुत बड़ी चुनौतियों, हम सब जानते हैं प्रतिदिन कितना संघर्ष है चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना हों। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी मैंने 50% काम किया, आप सबको भागवतम इंट्रोड्यूस किया, अब 50% काम है वर्णाश्रम को इंट्रोड्यूस करना। तो उसके लिए इस्कॉन में पूरी वर्णाश्रम मिनिस्ट्री है, बहुत ऊंचे के स्तर पे चर्चाएं हो रही हैं कितने स्तर तक वर्णाश्रम करना है, किस ढंग से करना है, कितना आसान नहीं है इसको करना। तो बहुत सी ऊंचे चर्चाएं हो रही हैं बड़े लेवल पे, लेकिन मुख्यतः जो बात प्रिंसिपल्स हम समझ सकें और इसको अपने जीवन में इस ढंग से हम उतार सकते हैं। और जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जन्म का कोई भी महत्व नहीं है। प्रभुपाद ये भी उदाहरण देते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि एक डॉक्टर का जो बच्चा के घर में जिसका जन्म होता है तो उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि डॉक्टर का संतान डॉक्टर बनना पसंद करती है और डॉक्टर बन भी जाती है। लेकिन बिना प्रशिक्षण के ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, हाईकोर्ट जज का बेटा तो हाईकोर्ट अगले दिन जाके वो जज की कुर्सी पर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से किसी के घर में, ब्राह्मण के घर में जिसका जन्म हुआ, बिना प्रशिक्षण के वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन जन्म का प्रभाव पड़ता है क्योंकि जन्म से उसको वैसा एक वातावरण मिल जाता है कि वो उसी वर्ण को स्वीकार कर ले। तो जैसे हम देखते हैं, हमने ब्राह्मण कैसे दूषित हुए, ब्राह्मण वर्ग में आके भी श्रृंगी ने उनके अंदर अहंकार आया तो वो तब से कलयुग से ब्राह्मणों का पतन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से देखते हैं द्वापर युग में महाभारत में कर्ण का चरित्र आता है। हम सब लोग पूछते हैं कि कर्ण ठीक है वो सूत पुत्र उनको कहा गया, लेकिन उनके अंदर जो क्षत्रिय के गुण थे तो फिर जन्म के आधार पर क्यों, जन्म के आधार पर बोला जा रहा है कि वो सूत पुत्र है। तो उसे बताया गया ठीक है जो कर्ण है उनके अंदर योग्यता तो थी क्षत्रियों वाली, अच्छे वो धनुर्धारी थे, लेकिन गुण नहीं थे, पूरे गुण विकसित नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर दुर्गुण क्या था कि वो दुर्योधन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। और उन्होंने कहा कि द्रौपदी को भरी सभा में लाओ, ये कर्ण का ही योजना थी कि कि द्रौपदी का वस्त्र निर्वस्त्र किया जाए भरी सभा में, तो क्षत्रिय का मुख्य गुण होता है सुरक्षा प्रदान करना, है ना। और यहाँ पे कर्ण क्या कर रहे थे, सुरक्षा प्रदान ना करके बल्कि और हानि पहुंचा रहे थे, और वो दुर्योधन का सहयोग दे रहे थे जो कि दुर्योधन दूसरों को हानि पहुंचा रहा था। हालांकि कर्ण में ये गुण था कि वो दानवीर था, ये गुण था, लेकिन पूरे क्षत्रिय के गुण नहीं थे। तो इस प्रकार से जन्म भी सहयोग होता है, दे सकता है अपने वर्ण के गुणों को विकसित करने के लिए, लेकिन मुख्य बात है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण हम दे पाएंगे निर्भर करेगा कि आसपास की संस्कृति कैसे है, और संस्कृति को हम सुधार सकते हैं पूरे कृष्णा भानामृत का प्रचार करके। और अच्छा मौका है हमारे पास, पुस्तकों का खूब वितरण करें, और हम देखते हैं इस कौन संस्था में पुस्तक वितरण से ऐसे ऐसे लोग भक्त बने। रशिया में एक भक्त जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के समय वो पुस्तक वितरण कर रहा था, तो उसके पीछे KGB पुलिस पड़ गई, और वाके भागता गया पुलिस से बचते हुए, बचते एक ऐसे उसने बोर्ड में घुस गया जहाँ पूरे स्लॉटर हाउसेस थे, ऐसी गली थी जहाँ स्लॉटर हाउसेस थे, सारे कसाई घर थे। और वो इतना घबराया हुआ था, और उसके हाथ में पुस्तक थी, और सामने ही देखा एक कसाई खड़ा है, हाथ में उसके क्या बोलते हैं उसको जैसे वो काटते हैं चॉपर था, और पूरा खून से लथपथ। और भक्त ने घबराते घबराते उसके सामने किताब रख दी, और उसने भी बड़े खूंखार आंखों से उस किताब को देखा और ले लिया, और भक्त वहाँ से भाग गया बस, है ना। वो तो पहले इतनी खूंखार स्थिति देखकर भाग गया, लेकिन क्या हुआ, इस कसाई ने जब उस पुस्तक को पढ़ा, बाद में उसका हृदय बदला और उसने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की पूरी शरण ग्रहण कर ली। हाँ, कितनी बड़ी बात है। जैसे कल ही सच्चे पुत्र प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार से कश्मीर के जेल में गीता बांटी गई, और दो टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने गीता पढ़ी, और जब उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य मालूम चला तो उनकी आंखें खुल गई, दिमाग की खिड़कियां खुल गई, और इतना अच्छा आचरण हो गया उनका कि उन्होंने जेल में अपना हेड शेव कर लिया, माला का जप शुरू कर दिया, और उनके अच्छे आचरण को देखते हुए पुलिस ने उनको जल्दी छोड़ दिया। और जैसे ही बाहर निकले तुरंत इस्कॉन के उधमपुर मंदिर में गए और बोले कि इस किताब ने हमारा जीवन बदला है, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य रहेगा, अब हम इस किताब को बांटेंगे। कैसे संस्कृति, कैसे कहाँ एकदम शूद्र से भी नीचे का उनका आचरण था, और कैसे पुस्तक आते ही उनके अंदर इतनी अच्छी प्रवृत्तियाँ आ गई। इस प्रकार से हमारे पास इतना सुंदर यह धन है, इसकी हमें कीमत समझनी चाहिए और इसको बांटना चाहिए, तभी आसपास का वातावरण सुधरेगा, और तभी हम अपने वर्ण का सही ढंग से पालन कर पाएंगे और भगवान की सेवा में लग पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, क्वेश्चंस और कमेंट्स?
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, एक कम्युनिटी के लिए जिस प्रकार से आप बता रहे थे हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि की रिक्वायरमेंट रहती है, हम अपनी कम्युनिटी में भी देखते हैं कि अब जिस प्रकार से कम्युनिटी समय के साथ ये एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है, तो अगर इसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं तो कैसे इसकी शुरुआत होगी? मैं समझता हूँ, इसकी नीड को समझता हूँ, इसको शुरुआत भी करना चाहता हूँ, तो कैसे इसको किया जा सकता है, थोड़ा इसके विषय में बताएं।
हाँ, ये इतना ऑफ एंड नहीं बता सकते कि ये सॉल्यूशन है तुरंत कर दो, इसलिए बहुत डिस्कशंस चाहिए, और कुछ एक कमेटी बनाई जाए और प्रायोरिटीज लिखी जाए हमारे समुदाय की, क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं। नथिंग कैन मिस, ऑल थिंग्स कैन नॉट बी स्टार्टेड एट ए टाइम। हम पर्टिकुलर एक या दो प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उसको टॉप प्रायोरिटी लेके पहले उसको स्टेबलाइज करें, धीरे धीरे आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम सब भक्तों को इसकी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, जितनी मात्रा में आवश्यकता महसूस होगी उतना डेडिकेशन होगा, करने में इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस चाहिए होगा, एक दूसरे को समझना चाहिए होगा, कोऑपरेशन चाहिए होगी, तो सब लोग इसकी आवश्यकता समझेंगे तो हो पाएगा, है ना। तो आवश्यकता कैसे समझ में आएंगी, जब बाहर की दुनिया से पूरे फ्राई हो जाएंगे, देखेंगे कितनी गड़बड़ है बाहर जाना, असत्संग से बचने का मन करेगा, सत्संग के गलत प्रभाव को समझेंगे, और सत्संग के महत्व को जानेंगे तो फिर इच्छा उत्पन्न होगी, कुछ अपना होना चाहिए। समय इच्छा होगी तो फिर आसान होगा।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छे से समझाया वर्णाश्रम और पूरा जो वैष्णव संस्कृति है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे जो भक्त हैं वो बहुत ही स्कैटर्ड हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दो या तीन या चार भक्त इकट्ठे रह रहे हैं कि किसी क्लस्टर में, तो सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट है कि हम जो एक फार्म हाउस कल्चर को इस तरह के डेवलप करें कि जहाँ पे सब भक्त इकट्ठे रहें। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जगह मिल जाए इतनी, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहली कल्चर, पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि हम सब इकट्ठे रहें, और उसके बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, बच्चे होंगे, स्कूल की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे मतलब इसको शुरुआत करें? और
नहीं, जरूरी नहीं है इकट्ठे रहना, ऐसा नहीं है। एक ही स्कूल में भेजने के लिए, अभी भी तो हम एक सब डीपीओ स्कूल में भेजते हैं, चाहे इतनी दूर हो, अलग अलग जगह से लोग जाते हैं हमारे, जरूरी नहीं है। एक ही स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए थोड़ी कि इकट्ठे रहना जरूरी है ना। एक ही हॉस्पिटल से इलाज कराने की जरूरी नहीं कि सब इकट्ठे रहें। इकट्ठे रहना बेहतर होगा, बट ऐसा नहीं है कि इकट्ठे रहना अति आवश्यक है। कहीं से तो शुरुआत कर ही सकते हैं हम, और जरूरी नहीं है कि फॉर्म होना, फॉर्म एक अच्छी बात है, फॉर्म होगा तो, बट ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं होगा तो हम शुरू ही नहीं कर सकते। फॉर्म विल वेरी गुड सपोर्ट, बट विदाउट फॉर्म ऑल्सो सम नीड्स कैन बी मेट ऑल्सो। हमारे बीच में रघुनाथ प्रभु आए हैं वृंदावन गुरुकुल से, तो कुछ गुरुकुल के विषय में बताना चाहते हैं। हाउ इट विल हेल्प इन अस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। एंड आप लोग में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते। मेरी भी भक्ति का जो शुरुआत हुआ था वो इसी मंदिर से हुआ था, और प्रभु जी के ही प्रशिक्षण में, मतलब उनके रह के, उनके अंडर रह के हमने सब कुछ सीखा, और उसको जाके हमने आगे चल के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राधा राधिकारमन जी के सामने, कृष्ण बलराम जी के सामने और सबके सामने हूँ। तो प्रभु जी, मैं ना थ्री मंथ्स बैक आई वॉज इन मलेशिया, मैं मलेशिया में था। तो मलेशिया में हमारे कुछ डिस्कशन चल रहा था एक डिवोटी से जो कि सिंगापुर में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला मलेशिया कितना नीट एंड क्लीन है ना, और कितना ऑर्गेनाइज है। तो उन्होंने बोला कि सिंगापुर इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। मतलब सिंगापुर ऑर्गेनाइज क्यों है? मतलब हालांकि है तो सारा कुछ मटेरियलिस्टिक ओनली, बट लेकिन अगर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम तो हंस की तरह हर अच्छी चीज़ को पिकअप कर सकते हैं हर जगह से। तो उन्होंने बोला कि सिंगापुर वालों ने क्या किया, उन्होंने सोच लिया कि 40 साल के ऊपर का जो इंसान है ना, हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल्स में जाके 8-8 साल के 9 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी कि ट्रैफिक के रूल क्या होते हैं, अच्छा होना किसे कहते हैं, किसी के साथ गुड वेलफेयर किसे कहते हैं, या फिर जो भी उनकी, बिकॉज वो क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को। तो उन्होंने बच्चों को कल्टिवेट करना शुरू किया। और प्रभुपाद ने भी ये स्टेटमेंट दी है, और शीला जीव गोस्वामी ऑल्सो सेड कि जब तक बच्चे बचपन से कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हम अच्छा फ्यूचर जो है समाज का नहीं सोच सकते। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 2010 में एक, हमारी टीम है आईआईटीएंस जो है, आईआईटी के लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी हमारे जो प्रोफेसर हैं, इज़ अ डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल, तो उनके अंडर हम लोगों ने ज्वाइन किया 7 लोगों ने। और हम लोगों ने फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया। कोई भी एक मेटेरियलिस्टिक स्कूल होता है वो 5 साल के अंदर ही बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ा कर देते हैं, और हमारा जो गुरुकुल है, जो शिला प्रभुपाद की प्योरिटी से बना हुआ स्कूल, 35 साल से स्ट्रगल कर रहा था कि हम लोग वहीं पे थे जहाँ से वो स्कूल शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे थे। तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु का एक विजन था कि हमारे पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए, जो कि आपने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। तो हम लोगों ने बाय द ग्रेस ऑफ शिला प्रभुपाद 70 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर करी, हमारे गुरु वृंदावन से ही कुछ 15 किलोमीटर आगे इस गांव को कहते हैं आझाई। आझाई उस गांव का नाम है जहां पे भगवान ने अघासुर को मारा था। अघासुर जैसे जो भगवान ने राक्षस मारे उन राक्षस का एक अनर्थ के साथ रिलेशन किया जाता है, तो जो अघासुर था वो इग्नोरेंस का प्रतीक था और इग्नोरेंस को केवल एजुकेशन मार सकती है। तो कृष्ण का एक ऐसा अरेंजमेंट था कि हमें 70 एकड़ जमीन मिली, उस 70 एकड़ जमीन के अंदर हम लोगों ने 6 साल के स्ट्रगल के बाद एक स्कूल की स्थापना कर दी। हम लोगों ने बिल्कुल भी अग्रेसिव प्रीचिंग नहीं करी स्कूल के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, लेकिन अब वो स्कूल बन के तैयार हो चुका है और अप्रैल 1st वीक से हम लोग स्कूल के अंदर नया सेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी ने बोला, जैसे तरीके से प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कितने अच्छे तरीके से, कि हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोगों ने इन 4-5 सालों के अंदर मेटेरियलिस्टिक फैमिली के बच्चों को भी गुरुकुल में डाला, लेकिन अब टाइम आ गया कि खाली जो प्रभुपाद का विजन था कि डिवोटीज के बच्चे स्कूल में पढ़ें और वो शिक्षा लेके अपने समाज में जाके उनको प्रचार करें, वो समय आ गया है। 70 एकड़ जमीन के अंदर हमारी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बच्चों को हम खुद कल्टीवेट करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फूड उगाया जाता है। हमारी अपनी गौशाला है जिसमें केवल अभी 100 गायें हैं, लेकिन हमारी उसके पीछे एक नई गाय जो गौशाला बना रहे हैं उसके अंदर 350 गायें हम अकोमोडेट कर पाएंगे जो कि गिर और साहिवाल गायें होंगी। हम बच्चों को वो भी सिखाएंगे कि गायों को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे रखा जाता है। उसके अलावा 7th, 6th, 7th, 8th 3 साल के अंदर अंग्रेजी मतलब इंग्लिश की कितनी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा 3 साल का है, उसके लिए बुक लेकर आया, उसमें लिखा हुआ था आई लाइक टू ईट बीफ, बीफ लुक्स लाइक दिस, मतलब उसमें गायों को खाने की बात बोली जा रही है इंग्लिश के हाइम्स के अंदर। मतलब वो जो पोएम हम बचपन में सीखा करते थे वो अब इस तरीके की पोएम्स आ गई हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया गुरुकुल के अंदर, ऑलरेडी हम लोगों ने एक रिसेंटली बुक लॉन्च करी थी, शिला गोपाल कृष्ण महाराज के जो व्यास पूजा थी उसके अंदर हमने एक बुक लॉन्च करी थी वैदिक हिस्ट्री, और उसके ही माध्यम रखते हुए हम लोग 1st से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों के लिए इंग्लिश की बुक्स लॉन्च कर रहे हैं जो हमारी अपनी बुक्स होंगी, यानी हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी अपनी किताबों से। और ऑलरेडी 6th, 7th, 8th के अंदर भागवतम से ही, प्रभुपाद की जो इंग्लिश बुक है भागवतम, उससे ही हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। नॉर्मल मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल मैथमेटिक्स के साथ साथ हम लोगों ने वैदिक एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब इन द सेंस कि 7-8 साल के पूरे स्ट्रगल के और रिसर्च के बाद वी आर रेडी टू नाउ कम। अब आप लोगों से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने डिवोटी कम्युनिटी के लोगों को, जो कम्युनिटी के लोगों को आप इंस्पायर करें कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें। यहाँ स्टॉल है, वहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह है। स्टॉल हम रोज़ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वृंदावन में रहते हैं और दूसरे स्कूलों में भी, दूसरे जगहों पे भी प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एक दो पोस्टर्स यहीं पे लगा के जाएंगे जिसमें फ़ोन नंबर है। आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है आप हमसे आके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वृंदावन में 9 तारीख को हमारा एक 1st टेस्ट है। अगर आपके पास इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को डालने में, अपने पोते पोतियों को डालने में, या अपने भतीजों को, भांजों को, किसी को भी जो भी आपसे कनेक्टेड है, तो आप प्लीज़ हमारे स्टॉल पे आइए और वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं। सो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट हेल्प, क्योंकि अगर हम लोग नहीं अपने बच्चों को डालेंगे तो फिर हमको गुरुकुल को भरने के लिए बाहर के बच्चों को बुलाना पड़ेगा, जो कि वापस जाके फिर घर जाते हैं, घर जाके मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाते हैं और फिर आके बताते हैं कि मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा कर आए। तो अगर समाज के अंदर हम अलग तरीके के लोगों को रखेंगे, एक नेचर का बंदा नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ राशि में भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे।